हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदहरणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्बरधरुणबिं बफल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो नापरा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। पहला श्लोक श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम नृणं यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणं यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। शब्दात् श्री शुक उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवमेतन्निगदितम् एवं मना इस प्रकार एतत् ये सब निगदितम् उत्तरित यानी बताया। अभी जो पहले उन्होंने इससे पहले वाले अध्याय में जो बताया था कि किस तरह से जीव को अपने सांस अपने मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरह से भगवान को स्मरण करना चाहिए, तो ये बता रहे हैं पृष्ठवान यद भवान ममा, जिस तरह से आपने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था, निर्णाम यन म्रियमाणानाम कि जो मनुष्य है और जो म्रियमाणानाम यानी जो मरने वाले हैं मनुष्येषु, वो मनुष्य जो मरने वाले हैं मरणासन व्यक्ति हैं, अगर वो बुद्धिमान है मनीषिणाम। यहाँ पर अंतिम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है मनीषिणाम, मतलब अगर उसके अंदर बुद्धि है तभी वो सोचेगा कि मैं साधारण पशु पक्षियों की तरह तड़पते तड़पते नहीं मरूं, मैं मरूं, अगर मनुष्य का भगवान ने जन्म दिया है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो इस तरह से मरे कि दोबारा उसको पैदा न होना पड़े, वो इस तरह से मरे कि वो अपने कर्म बंधन को तोड़ सके, वो इस तरह से मरे कि उसे कभी भी जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े। तो फिर ये कैसे पता चलेगा, जब हमको कोई शुद्ध भगवान का भक्त शास्त्रों के माध्यम से बताएगा कि जीव को किस तरह से मरना चाहिए या मृत्यु के समय जीव को क्या करना चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि निर्णाम यन म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम कि बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, आपने मुझसे जैसा पूछा था वैसा मैंने आपको बताया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार से जिज्ञासा की थी उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नरनारी हैं और वे प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान होता है। प्रायः सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल या सूक्ष्म भौतिक शरीर के साथ करते हैं, जबकि वे ऐसे नहीं हैं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हों, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं। अत्यंत ही सुंदर बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि करोड़ों लोग हैं इस संसार में, लेकिन सभी अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ मतलब बेवकूफ हैं। क्यों बेवकूफ हैं? क्योंकि वो अपने आप को मनुष्य यह शरीर समझते हैं, सूक्ष्म शरीर समझते हैं, मन बुद्धि समझते हैं, और उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, और वो अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मुझे किस तरह से अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इच्छा करते हैं कि किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक अपने शरीर तथा मन से परे अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है, तब तक वो जो भी कार्य कर रहा है, भले भौतिक दृष्टि से उसके पास बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारी एजुकेशन आ जाए, बहुत सारा नाम यश प्राप्त हो जाए, सुंदरता प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सब निष्फल है, नितांत निष्फल है, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो सब उसको एक न एक दिन यहीं पर छोड़ के जाना है, उसकी आत्मा का कल्याण तो नहीं हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हजार मनुष्यों में से कोई एक अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। हजारों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो आज श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के शब्दों को पढ़ता है, उस पर विश्वास रखता है, अपने आप को आत्मा मानता है और भगवान को प्राप्त करने के लिए ये कार्य करता है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं 7.3 मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से भी उन प्रयत्न करने वालों में भी हजारों में से कोई एक होता है जो मुझे वस्तुतः जानता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु ऐसे शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्धि आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता है, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सकेगा। भगवान को जानने के लिए एक शुद्ध वैष्णव गुरु का होना बहुत आवश्यक है। श्री प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं जब तक कि हमें किसी शुद्ध गुरु के साथ संपर्क नहीं होता, तब तक न हम भगवान को समझ सकते हैं न भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.122 से 123 में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहितु की कृपावश व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया। कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं माया मुक्त जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान माया मुक्त जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान जीवे रे कृपाए कोले कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान ने अपनी अहितु की कृपा से वेद व्यास जी का अवतार लिया और मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह से भूल चुका हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है, अतएव संपूर्ण भक्ति योग की क्रिया भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है। कुत्ते को हम पूरी जिंदगी बताते रहे कि आप आत्मा हो और आपका संबंध भगवान के साथ है, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। जानवरों के लिए नहीं है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह पुनः जागरण केवल मनुष्यों के जीवन में संभव है जो 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते हैं, अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती है। यहाँ पर मनुष्यणाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे अंतिम शब्द है निर्णाम्रियमाणानाम मनुष्येषु मनुष्यणाम, एक तो मनुष्य ही अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है, और उनमें भी ये जो सारे बेवकूफ जो होते हैं अल्पज्ञ लोग होते हैं। अल्पज्ञ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस संसार में कैसे खुश रहें, हमें धन मिलना चाहिए, हमें अच्छा घर मिलना चाहिए, अमुक व्यक्ति से मेरा विवाह होना चाहिए, पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। आज हम देखते हैं संसार में सब लोग यही चाहते हैं, किसी से भी मिलोगे तो वो अपना कोई ना कोई दुखी दास्तान बताएगा और बोलेगा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए बस, कोई भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बुद्धिमान वर्ग को मनुष्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतः मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में उनको नहीं आती है। और यहाँ पर मनीषणाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषणाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत हैं। यह कृत्य मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से संस्तुत किया गया है। अभी उन्होंने बताया सुखदेव गोस्वामी ने मृियमाणा मनुष्य के लिए आपने क्या पूछा था वो मैंने बताया, और वो क्या बताया श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मनीषण है जो बुद्धिमान है उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सारे सहारों को छोड़कर श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और शरण ग्रहण करने का क्या तरीका है, भगवान के पवित्र नाम और उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और सदैव अपने हृदय में भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने वाले कार्य करने चाहिए। ये सभी भगवान की हरि कथामृत है, और यह कृत्य मेरी आसन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से संस्तुत किया गया। यही बताया ना कि क्या करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए, और भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद श्रुति गोस्वामी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में किस किस की पूजा करने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है, अगर या क्या आपको इच्छा है, अगर किसी वस्तु की इच्छा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। वे कहते हैं ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम् इन्द्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवीं माया तुषी काम तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान अन्नाद्य कामस्त्वंदितम् स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामान साध्यान संसाधको विशां आयुष कामोश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। यज्ञं यजित्यशस्काम कोशकाम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमासते। शब्दार्थ, ब्रह्म वर्चस कामस्तु। ब्रह्म वर्चस मतलब जिसको बहुत ज्यादा तेज की इच्छा, कामस्तु मतलब जो अगर जो उनकी कामना करते हैं, जो उनकी इच्छा करते हैं, किसकी बहुत ज्यादा तेज की। तो यजेत ब्रह्मण पतिम, यजेत तो उनको पूजा करनी चाहिए, किसकी, ब्रह्मण पतिम यानी वेदों के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। और इंद्रम इंद्रिय कामस्तु यानी कि स्वर्ग के राजा को इंद्रिय कामस्तु, लेकिन जो प्रबल इंद्रियों की इच्छा करते हैं यानी जिनको इंद्रियों की इच्छा है उसको स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजा काम यानी संतान, जिनको संतान की इच्छा है उनको प्रजापति प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। देवी मायास्तु श्री कामस, देवी यानी देवी, देवी को मायाम यानी संसार की स्वामिनी जो दुर्गा देवी है, तू यानी भी श्री कामा यानी सौंदर्य की कामना करने वाले को दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। और तेजस कामो विभावसुम, तेजस यानी शक्ति, जिसको शक्ति की इच्छा होती है, विभावसुम यानी अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। वसु कामो वसुन रुद्धन, वसु कहते हैं संपत्ति को, जिसको संपत्ति की इच्छा है उसको रुद्रान यानी वसुओं के जो ईश हैं रुद्र शिवजी, जो जिनको ग्यारहवां वसु कहा जाता है, ग्यारहवां रुद्र कहा जाता है, शिवजी संपत्ति की इच्छा करने वालों को शिवजी की। और वीर्य कामोस्थ वीर्यवान, वीर्य यानी जिनको शक्ति बल की इच्छा हो उनको वीर्यवान यानी अत्यंत ही शक्तिशाली, ये ऐसे है। वसुन कामो वसु यानी जिनको संपत्ति की इच्छा है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। और रुद्राण वीर्य कामा यानी जिसको शक्ति की इच्छा है उसको शिवजी की पूजा करनी चाहिए, जो बहुत ही शक्तिशाली है। अन्नाद्य कामस त्विदितम स्वर्ग कामो कामो दिते सोतान, अनाद यानी अनाज की जिसको कामना हो तो आदितम यानी देवताओं की माता अदिति की, और स्वर्ग की कामना हो तो आदित्य सुतान यानी आदित्य के पुत्र यानी के देवताओं की पूजा करनी चाहिए। विश्वान देवान, विश्वान यानी विश्व देव को, देवान यानी देवताओं को राज्य कामान, जिनको राज की इच्छा हो। और साध्यान यानी साध्य देवों को संसाधक है, इच्छा पूरी करने वाला विषमान वर्णिक वर्ग की, जो वर्णिक वर्ग है उनकी इच्छा पूरी करने वाले को इनकी पूजा। विश्वान देवान राज्य कामान यानी जिनको राज्य की इच्छा हो उनको विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। साध्यान संसाधक को विशान यानी कि जो जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनना चाहता है उसे संसाधकों की पूजा करनी चाहिए। और आयुष कामो श्विनो देवो, आयुष कामो यानी बहुत ज्यादा आयु, जिनकी ज्यादा उम्र बड़ी करना चाहते हैं, अपनी बड़ी आयु की जिसकी ख्वाहिश है उसे अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। और पुष्टि कामो इलाम यज, इलाम कहते हैं पृथ्वी को, पुष्टि कामो यानी जो अपनी शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातर, जो अपनी प्रतिष्ठा को है ना बढ़ाना चाहते हैं, पुरुषो रोदसी लोकमातर उसे क्षितिज और है ना ये पृथ्वी महारानी दोनों की पूजा करनी चाहिए। रूपा भी कामो गंधर्वन, जो बहुत ज्यादा सुंदर रूप की इच्छा करते हैं उन्हें गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। स्त्री कामो अप्सरा उर्वशी, और जिनको सुंदर स्त्री की इच्छा उसे उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। आधिपत्य काम सर्वेशम यजेत परमेष्ठितम, आधिपत्य कामों का मतलब होता है जो दूसरों पर आधिपत्य करना चाहते हैं, राज्य चलाना चाहते हैं, जो सबों को सबों के ऊपर शासन करना चाहते हैं। यजेत परमेष्ठितम, परमेष्ठितम मतलब ब्रह्मांड के प्रमुख जीव यानी ब्रह्मा जी की उनको पूजा करनी चाहिए जो कि राज्य करना चाहते हैं। यज्ञम यजेत यशस काम, यज्ञम यानी भगवान को यजेत उसको पूजा करना चाहिए, यशस काम जो प्रसिद्धि चाहते हैं, जो यशस्वी बनना चाहते हैं। अगर इस संसार में हम देखते सब लोग को यश की इच्छा होती है ना, तो वो अलग अलग कार्य करके यश प्राप्त करना चाहते हैं। कोई है ना साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है और बड़े बड़े कार्य करते हैं कि हम लोग है ना यशस्वी बन जाए, लेकिन उनका यश जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम तक रहता है, है ना, क्योंकि इन्वेंशंस तो आगे आगे बढ़ती जाएंगी। पहले तो जिसने ये सीलिंग फैन बनाया होगा उसकी भी बहुत चर्चा हुई होगी, यश बड़ा होगा, लेकिन उसके बाद एसी आ गया तो फिर उसकी है ना प्रशंसा बढ़ी। इस तरह से जो जो क्योंकि इन्वेंशंस तो समय के साथ होती रहेंगी, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, करोड़ों साल पहले शबरी ने भगवान को बेर खिलाए और आज तक हम उनका गुणगान करते हैं, तो जिसको यश की इच्छा हो तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गिरीशम यानी हिमालय के स्वामी शिव जी को दाम्पत्यार्थन यानी कि दाम्पत्य प्रेम के लिए, क्षमा, कोश काम प्रचेतसम, कोश काम यानी जो अच्छी बैंक बचत करना चाहते हैं उनको प्रचेतसम स्वर्ग के कोषाध्यक्ष जो स्वर्ग के जो खजांची हैं वरुण उनको उनकी पूजा करनी चाहिए। और विद्या काम तु गिरीशम जो विद्या के इच्छुक हैं उन्हें हिमालय के स्वामी शिवजी की और दाम्पत्य अर्थ यानी जो दाम्पत्य प्राप्त करना चाहते हैं पति पत्नी की तरह अच्छा सुख पति पत्नी के जीवन में अच्छा सुख प्राप्त करना चाहते हैं उमाम सतीम शिवजी की सती पत्नी को जो कि उमा के नाम से विख्यात है उनकी पूजा करनी चाहिए। अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जैसे शुरू में लिखा है ना, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणापतिम, जो तेज में लीन होना चाहते हैं उसको ब्रह्मा जी की या फिर बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक है उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान का इच्छुक है उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी है उसे भौतिक जगत की आदिक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत ही शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए और जो केवल धन की इच्छा रखता है तो उसे वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे आदित्य की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव के की और जो जनता में लोकप्रिय होने का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की और जो पुष्टि शरीर चाहता है उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी यानी पद के स्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की और जो अच्छी पत्नी चाहता है उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी की ती का इच्छुक है उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता है उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत ही विद्वान बनना चाहता है तो उसे शिवजी की और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिवजी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की भिन्न भिन्न विधियां हैं कि जो जिस जिसको जो जो वस्तु की आवश्यकता हो तो उन्हें विशेष देवताओं की पूजा करके वो प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव भौतिक भोग की प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता है, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की इच्छा होती है वेदों में उसके अनुसार उसको पूजा का एक विधान दिया गया है, क्योंकि जीव की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करेगा। अगर किसी को भगवान चाहिए ही नहीं तो भगवान की प्राप्ति के लिए तो कार्य नहीं करेगा ना। तो जिसको जिस जिस वस्तु की इच्छा होती है तो उसको वेदों में एक रास्ता दिया गया है कि अगर आपको धन चाहिए तो इसकी पूजा करो, सुंदरता चाहिए तो उसकी पूजा करो, अगर पत्नी चाहिए तो उसकी पूजा करो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि शिवजी की पूजा करने से रावण अत्यंत ही शक्तिशाली बन गया था और वह शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने शिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वह शिवजी की कृपा से तब तक उतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि अंत में उसने भगवान श्री रामचंद्र को ललकारा और इस तरह से स्वयं नष्ट नहीं हो गया। मतलब जब तक वो भगवान को भगवान के साथ शत्रुता नहीं करेगा ना तो वो देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करके वो है ना, अगर भगवान और भगवान के भक्तों को तंग नहीं करेगा अपने वरदान से, यदि वो प्राप्त करता रहेगा तो उसको आनंद मिलता रहेगा। लेकिन जब वो भगवान और भगवान के भक्तों के को अगर कोई कष्ट देने आएगा तो उसका अंत हो जाएगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बोलते, दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग की कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो स्थूल भौतिकतावादी हैं, वे कम बुद्धिमान होते हैं। और भगवत गीता 7.20 में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया के भ्रामिक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन के विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रकृति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। 7.20 में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, कामस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसकी बुद्धि काम वासनाओं ने हर ली गई है, उसका सद्विवेक जो है वो इच्छाओं के द्वारा मारा जाता है, फिर वो विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो ये है ही नहीं कि हम इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करके आनंदित हो सकते हैं। वास्तविकता तो केवल इतनी है कि हम आत्मा हैं और आत्मा तभी प्रसन्न हो सकती है जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है। तो यहाँ पर जो बेवकूफ होते हैं, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो ही देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करने के बाद उनको जो फल प्राप्त होते हैं वो फल नश्वर होते हैं और उन्हीं फलों के द्वारा उनको कष्ट मिलता है। भौतिक जगत की सारी वस्तुएं जो हैं वो हमें कष्ट प्रदान करने वाली होती हैं। 5.22 में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योनया एवते, कि इस भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं जिनको हम सोच रहे हैं कि वो प्राप्त करके हमें आनंद आएगा, वही वस्तुएं हमारे लिए दुख का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि आद्यंतवंत कौन थे, उनका आदि है और अंत है, लेकिन हम तो आत्मा है, ना आदि है ना अंत है, तो फिर हम इन नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करके कभी आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते, न तेषु रमते बुधा, जो वास्तव में मनीषिणी है, जो बुद्धिमान है, वो इन चीजों के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या क्या है, जन्म मृत्यु तथा व्याधि का समाधान ढूंढना, कि हम जन्म क्यों ले रहे हैं, बार बार मरते क्यों हैं, बीमार क्यों होते हैं, बूढ़े क्यों होते हैं, और इनका समाधान ढूंढना जो है वो वास्तविक हमारी समस्या है। लेकिन आज तक किसी साइंसदान ने इन चीजों पर काबू नहीं पाया है। तो भले कितनी भी साइंस एडवांस हो जाए, लेकिन इन सारे ये जो समस्याएं हैं उनको वो सॉल्व नहीं कर सकती है। कोई भी अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, किंतु ये समस्याएं ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती हैं, ना ही तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। ये कोई नहीं, यहाँ पर इतने सारे देवी देवताओं के बारे में लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा कि यदि आप किसी को जन्म नहीं लेना है तो इस देवता की पूजा करें, यदि किसी को बूढ़ा नहीं होना है तो इस देवता की पूजा करें, यदि किसी को मृत्यु नहीं चाहिए तो। इवन बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, राक्षस हैं बहुत सारे पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि हमें अमर बना दो, लेकिन देवता कहते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की बहुत ही कठोर तपस्या की, और इतनी कठोर तपस्या 36,500 साल तक वो तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें अमर कैसे बना दूं, अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, मरना तो तुम्हें पड़ेगा, बीमार तो तुमको होना पड़ेगा, बूढ़ा तो तुमको होना पड़ेगा। तो ये समस्याएं किसी देवता की कृपा से या किसी साइंटिस्ट की कृपा से नहीं सॉल्व हो सकती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत की तथा श्रीमद् भागवतम में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में किया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्य में भी वे लोग जो और वो और भी दुर्लभ है जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हैं, उनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवतम के महत्व से अवगत हों, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए परिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अत्यंत ही विकसित मन वाले पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे। और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचें और बजाय इसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन की खोज करें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी यहाँ ये बता रहे हैं कि विभिन्न देवताओं की पूजा करके जीव को विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी प्राप्त हो जाए इस भौतिक जगत में, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, इस संसार में जो भी आया हो उसे एक न एक दिन जाना है। इसलिए बुद्धिमान तो वही है जो ये सोच कर जाता है कि दोबारा मैं कभी भी जन्म नहीं लूंगा अपने इस मनुष्य, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन किसका है, मनुष्य का है। भगवान ने केवल मनुष्य को ही यह अधिकार लिया है कि वो शास्त्र अध्ययन करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। इसलिए यदि हृदय के अंदर इच्छाएं अभी समाप्त नहीं भी हुई है, इनमें से कोई वस्तुओं की इच्छा हो भी रही है, तो भी जीव को किसी और जगह पर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीर्वेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम, अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, कोई वस्तु की इच्छा प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, और सर्व कामोवा। भले ही आपके मन में हर एक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, आप सुंदर भी बनना चाहते हो, आप शक्तिवान भी बनना चाहते हो, आप धनी भी बनना चाहते हो, आप यशस्वी भी बनना चाहते हो, तो जो भी भले आपके अंदर सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उधार भी, या फिर भले आपके अंदर केवल मुक्ति की इच्छा भी है, तो भी क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेना, तो भी तीव्र भक्ति के साथ यजेत पुरुष परम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किसी इच्छा को लेकर भी करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि भगवान वो दे नहीं सकते। भगवान समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं, देवताओं को भी जो हमें जो वस्तुएं देते हैं वो अधिकार भगवान ने दिया है। ये देवता हमारी पूजा स्वीकार करके भगवान से वस्तु प्राप्त करके फिर जीवों को देते हैं। देवताओं को भी ये अधिकार भगवान ने दिया, तो क्या भगवान के पास अधिकार नहीं है वो वस्तु देने का? भगवान अवश्य दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान बहुत कृपालु है। इसलिए भगवान चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के पास किसी भौतिक वस्तु के लिए जाता है, तो कृष्ण कहे आमी बजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे एई बड़ो मूर्ख। ये मुझे भजन कर रहा है, मेरा नाम जप कर रहा है और मांग क्या रहा है, विषय, विषय सुख यानी जहरीला सुख इस संसार की भौतिक वस्तुओं को, तो ये एई बड़ो मूर्ख, ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसको वास्तविक आनंद के विषय में पता ही नहीं है कि मुझसे क्या प्राप्त करना चाहिए। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा राजा हो और उसको जाकर हम बोलें कि भाई हमें एक सूखी रोटी का टुकड़ा दे दो, तो बोलेगा यार कितना बेवकूफ है, मेरे पास आया है और सूखी रोटी मांग रहा है, मैं तो इसको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुलवा के दे सकता हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं कि कृष्ण को है आमी बजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख। मगर भगवान तो क्योंकि सबके सुहृद हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो कहते हैं आमी विज्ञान विषय के न दिबा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आमी विज्ञान वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, मैं तो नहीं हूँ, इसलिए आमी विज्ञान विषय के न दिबा, मैं उसे विषय प्रदान नहीं करता हूँ, विषयली वस्तुएं प्रदान नहीं करता हूँ, फिर क्या करता हूँ, स्वचरणामृत दिया विषय बुनिया। जब वो मेरे चरणों का स्पर्श करते हैं, जब वो मेरे चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं, तो विषय भूलिया भौतिक वस्तुएं जो है जिनके लिए वो मेरे पास आते वो भूल जाते हैं और मेरी चरणों की ओर वो उनका आकर्षण हो जाता है। जैसे हम जानते हैं महाराज ध्रुव ने भगवान की भक्ति किस लिए की थी, राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब राज्य प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने इतनी तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा ध्रुव बताओ तुम्हें क्या दूं। तब ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी कृतार्थ वरम नवांसे, मैं आपके दर्शन से आपके पवित्र नाम के जप से इतना कृतार्थ हो गया हूँ कि अब आपसे एक ही याचना करता हूँ कि मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, मुझे कोई भौतिक वस्तु, मैंने कांच के टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए जबकि मैं आपसे हीरा प्राप्त कर सकता था, आपकी भक्ति आपका प्रेम प्राप्त कर सकता था, मैंने भौतिक कांच की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा की, मैं बहुत मूर्ख हूँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे भौतिक वस्तुएं नहीं केवल आपके दर्शन की ही अभिलाषा है, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि आपका स्मरण मेरे हृदय में सदैव बना रहे, आपका प्रेम। तभी इसका मतलब ये नहीं है भगवान ने कहा नहीं ध्रुव अगर मैं तुमको नहीं दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, देखो ये कृष्ण जो है वो अपने भक्तों की इच्छा भी पूरी नहीं करता है बल्कि और भी ना उनको ठगा देता है कुछ और देकर, इसलिए मैं दूंगा तो तुम्हें वही जो तुमने मांगा है लेकिन उससे अधिक भी दूंगा। भगवान ने पूरा राज्य दे दिया, ध्रुव लोक दे दिया और उसके बाद उनको अपनी अमर भक्ति प्रदान की, अपना प्रेम प्रदान किया। आज तक ध्रुव महाराज को
भगवान के परम भक्त के स्वरूप में जाना जाता है, भले ही उनकी इच्छा, वो इच्छा से आए थे भगवान के पास। तो यदि भौतिक हृदय में कोई इच्छा भी हो तो भी हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, और इसी से हम इस भौतिक जगत में भी आनंदित रह सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, और इन चार कष्टों यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से भी मुक्त हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।